न्यायियों अध्याय सात। अतः अध्याय सात में तब गिदोन जो यरूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। न्यायियों सात अध्याय पहला पद। हेरोद नाम सोता आज भी गिलबोवा पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। गिलोद उसी भू स्थल का एक भाग है और ये मरोरम सोता वहां से फूट पड़ता है। वहां लोगों ने विशाल जलाशय बना दिया है, लोग वहां तैरने जाते हैं। आप भी वहां जाकर कुत्ते की तरह पानी पीकर गिदोन की सेना में भर्ती हो सकते हैं। और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी ओर मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। न्यायियों सात का पहला पद। ये गिलबोआ पर्वत की एक घाटी है जहां कोरे पहाड़ तो नहीं वरन एक बड़ी टीला है। वहीं मिद्यानियों की विशाल सेना एकत्र हुई थी, लगभग 135,000। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं, वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। गिदोन के साथ देने 32,000 पुरुष एकत्र हो गए थे। परमेश्वर ने उससे कहा कि वे बहुत अधिक हैं। नहीं तो इसराइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही बुजबल के द्वारा बचे हैं। न्यायियों सात का दो। परमेश्वर की चिंता विषय ये है कि मनुष्य अपने को नहीं परमेश्वर को महिमावंत प्रदान करे। परमेश्वर अपने काम का महिमावंत खुद चाहता है, उसके साधनों का नहीं। यही कारण था कि परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि 32,000 की सेना विजय पाकर अपने ऊपर घमंड करेगी, परमेश्वर पर नहीं। जब हम 1973 के पहले इसराइल गए थे, तब वे 1967 के युद्ध में अपने सैनिक शौर्य पर बहुत घमंड करते थे। हमने उनसे पूछा, आप क्या नहीं सोचते कि परमेश्वर आपके साथ था? वे उपहास की मुद्रा दर्शा देते और अपने सैनिकों को सराहने लगते। वे अपने ऊपर घमंड करने लगे थे। परंतु 1973 के यौम किपुर युद्ध के बाद उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पराजय के मुंह से निकाला था। वे सोचते थे कि सुएस कैनाल की परिवेश में बार्लेव रेखा का क्षेत्र अजय था, परंतु वो 24 घंटों में गिर गया। उनके विचार में गोलान ऊंचाइयों पर बने उनके गड्ढे गिराए नहीं जा सकते थे, परंतु बैरी 24 घंटों में उन्हें पार कर गए। इस प्रकार इसराइल एक बार तो हार के निकट आ चुका था, परंतु परमेश्वर के चमत्कारों द्वारा वे विजयी हो गए। इस प्रकार यौम किपुर युद्ध के बाद उनकी आस्था परमेश्वर में बढ़ गई और उनका पूरा भरोसा परमेश्वर में उस समय होगा जब रूस वहां आकर हारेगा। परमेश्वर प्रायः कुछ ऐसे विचित्र काम कर देता है कि उसका हस्तक्षेप स्पष्ट दिखाई देता है। परमेश्वर कहता है कि जब रूस की सेना की पराजय होगी, तब मैं सब जातियों में पवित्र किया जाऊंगा और वे जानेंगे कि मैं इसराइल का परमेश्वर हूं। आज किसी का साहस नहीं कि रूस से कह दे, अफगानिस्तान छोड़ो, नहीं तो हम अपनी सेना भेजकर तुम्हें खदेड़ देंगे। रूस से सब डरते हैं, क्योंकि उनका सैन्य शक्ति महान है। उनके शस्त्र उत्तम श्रेणी के और अति प्रभावी हैं। जब इसराइल उसका विनाश करेगा, तब दुनिया जान लेगी कि केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। परमेश्वर ने इसराइल के इतिहास में प्रायः चमत्कार ही किए हैं, इसलिए कि वे अपने पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखें। यही कारण था कि परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि वो अपनी सेना में उन सबको ना ले, अन्यथा वो घमंड से भर जाएंगे कि विजय उनकी उपलब्धि थी। इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। न्यायियों 7:3 पर 32,000 में से 22,000 डरपोक थे जो लौट गए। ऐसों की सेना में नहीं रखने का मुख्य कारण यह है कि यदि वे डर कर भागेंगे तो रणनीति खराब हो जाएगी और दूसरे सैनिकों का मनोबल भी टूट जाएगा। अतः परमेश्वर ने कायरों को निकाल दिया। इन 10,000 पुरुषों को देखकर फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं कि ये तेरे संग चले वो तो तेरे संग चले और जिस जिसके विषय में मैं कहूं कि ये तेरे संग ना जाए वह ना जाए। न्यायियों 7:14 पर अब अनुपात 13:1 का रह गया था, परंतु परमेश्वर ने कहा, गिदोन और एक काम करो, महिमावन मैं अपना ही चाहता हूं, इन सब को हेरोद के सोते पर पानी पिलाने ले जा, जो कुत्ते के समान पानी पिएगा वही मेरी सेना में रहेंगे। गिदोन उन्हें हेरोद के सोते पर ले गया, 300 ने कुत्ते की तरह पानी पिया, 9,700 इस बार लौटा दिए गए क्योंकि उन्होंने घुटने टेककर मुंह पानी के पास ले जाकर पानी पिया था। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, इन 300 के साथ उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं, परंतु यदि तू चढ़ाई करते करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वो अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। न्यायियों 7:9-11 पर गिदोन की सेना उनके सामने टिड्डों की सी थी, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी थी और उसमें असंख्य ऊंट सवार सैनिक थे। गिदोन के मन में डर था, अतः वो रात को बैरी के शिविर तक गया। वहां उसने सुना कि एक सैनिक अपना सपना सुना रहा है। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने एक विचित्र स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसे टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसे उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने, जो स्वप्न का अर्थ जान सकता था, उत्तर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इसराइली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिदान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इसराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। न्यायियों 7:13-15 पद गिदोन ने सबसे पहले स्वर्गदूत की परख की थी कि वास्तव में वो परमेश्वर का दूत है। दूसरी परख थी कि ऊन पर ओस घिरे। अब ये तीसरी परख थी, वो चुपचाप से सुनता है। परमेश्वर दूसरी बार अपनी सत्यता की पुष्टि करता है। इस प्रकार गिदोन को परमेश्वर की बुलाहट के 3 पुष्टिकरण प्राप्त हुए। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं, तब जैसे मैं करूं वैसे ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके, तब तुम भी छावनी की चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, क्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगे को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। न्यायियों 7:16-21 पर गिदोन के सैनिक खड़े खड़े नरसिंगा फूंक रहे थे और घड़ों को पकड़े हुए थे। बैरियों में नरसिंगा सुन ऐसी बगदड़ मची कि उन्होंने एक दूसरे को ही मार गिराया। परमेश्वर के तरीके अद्भुत होते हैं। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेत शीता तक और तब बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इसराइली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनशे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े और गिदोन ने एप्रेम के सब पहाड़ी देश में ये कहने को दूत भेज दिए कि मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यर्दन नदी के घाटों को बेत बारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यर्दन नदी को बेत बारा तक अपने वश में कर लिया और उन्होंने ओरेब और जेब नाम मिदान के 2 हाकिमों को पकड़ा और ओरेब को ओरेब नाम चट्टान पर और जेब नाम दाकरस के कुंड पर घात किया और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यर्दन के पार गिदोन के पास ले गए। तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिदान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया? सो उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। न्यायियों 7:22-8:1। उसने एप्रेमियों को युद्ध में नहीं लिया, उसने तो उन्हें बुलाया था परंतु वे आए नहीं। अब ये एप्रेमियों की समस्या अगले अध्ययन की है। अगले अध्ययन में हम शिमशोन का रोचक चरित्र भी देखेंगे। आज के अध्ययन में सीखने योग्य जो बातें हैं वो है, पहली, परमेश्वर को कोई काम करना है और वो आपको बुलाता है। यदि आप उसके काम में सम्मिलित नहीं होते हैं तो आपको श्राप मिलेगा। यदि परमेश्वर आपको कोई काम करने के लिए देता है तो वो चाहता है कि आप उस काम को इस प्रकार करें कि उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सामने आकर परमेश्वर के काम के श्रेय के पात्र बने जैसे अधिकांश लोग करते हैं। परमेश्वर अपना महिमावन बांटना नहीं चाहता है। वो जो भी काम करता है उसका पूरा महिमावंत वही चाहता है। यही कारण है कि उसके काम अजीबो गरीब होते हैं। यही कारण है कि वो बड़े बड़े लोगों को अपने काम में नहीं लेता है, क्योंकि ऐसे करने से महिमा उन लोगों का होता है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को काम में लेता है जिनसे किसी को कभी कोई आशा ही न रही हो और परिस्थितियां भी विचित्र ही होती है। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य अपने कामों द्वारा परमेश्वर को महिमा करे, न कि अपनी बुद्धि और प्रतिभा का। परमेश्वर की सेवा करना सीखे, उसे दूर होकर अन्य देवताओं के पीछे न जाए। आशा के बारे में लिखा है, जब तक उसने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर ने उसे आशीषे दी। जब तक आप परमेश्वर को खोजेंगे वो आपको आशीष देगा। यदि आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो वो भी आपको छोड़ देगा। आप दासत्व में हो जाएंगे और बैरी आपको यातना देगा। समस्याएं तो हम खुद ही पैदा करते हैं। हम परमेश्वर को त्यागने के दोषी हैं। यही तो हमारी समस्याओं का जड़ है। परमेश्वर की संगति में रहो तो वो भी आपको संगति देगा। आप उसकी संगति में रहें और जब वो आपके जीवन में और जीवन के द्वारा काम करें तो आप उसके सामर्थ, उसकी उपस्थिति और उसके आत्मा का अनुभव करें। परमेश्वर आपको उसके प्रेम का साधन बनाए कि जब आप मनुष्यों में परमेश्वर के प्रेम को बांटे तो वे आपके द्वारा परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें।